الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے دنیا اور آخرت میں خوش و خرم رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، سلسلہ نیک خواتین لے کر حاضر ہے۔ اس سلسلے میں تذکرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بروں کی صحبت نیکوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے گھروں میں ناچاکیاں کیوں ہیں؟ کہیں عورتیں ایسی عورتوں کے پاس تو نہیں بیٹھتی، مرد ایسے مردوں کے پاس تو نہیں بیٹھتے جو چغل خور ہوں، جو غیبت کرتے ہوں، جن کی صحبتیں بری ہوں، جن کی منزل صرف دنیا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ وہی درس دیں گے، وہی بات کریں گے، وہی نصیحت کریں گے، وہ اسی طرف لے جائیں گے جو نیکوں سے بدگمانی پیدا کرے گی، نیکوں سے دور کرے گی۔ چونکہ نیک دنیا کی رغبت نہیں دلائیں گے، آخرت کی طرف لے جائیں گے، جنت کی طرف جانے والے اعمال کا درس دیں گے۔ تو جو بروں کی صحبت ہے یہ نیکوں سے دور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔
حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اقوال مشہور ہیں، تو آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے 400 اقوال جمع کیے، حکیمانہ اقوال، بہت ہی زبردست اقوال۔ ان میں سے 4 کو سلیکٹ کیا، ان میں سے 2 وہ ہیں جن کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ نمبر 1، موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 2، اللہ کے ذکر کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ اور 2 وہ ہیں جن کو چھوڑ دینا ہے، ان کو کبھی دل میں نہیں لانا۔ ایک وہ ہے کہ اگر کوئی تم سے برائی کرے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم کسی سے بلائی کرو تو اس کو بھول جاؤ۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ نیک کے پاس بیٹھیں گے تو وہ یہ درس دے گا کہ اپنی بلائی کو بھول جاؤ، دوسروں کی برائی کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت لینے اور بروں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ نیک خواتین، یہ بھی ایک نیک خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے ہی ہے۔ تو اس میں بھی نیک صحبت، ایک طرح سے نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آج کل تذکرہ تو ہے مخدومہ کائنات کا۔ یا سیدی، آج مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج کس وصف عالی شان کا تذکرہ ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ام الحسنین
ماشاءاللہ
رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنے والد جو کہ نبیوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے محبت۔
سبحان اللہ۔
اور ویسے تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور یہ فرض ہے،
بالکل،
ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
بے شک
اس میں ہو گر خامی تو سب کچھ
نامکمل ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے والد بھی ہیں، ان کے بھی نبی ہیں،
بے شک۔
تو آپ کی محبت، آپ کی الفت والد کے لحاظ سے بھی ہے اور دوسرے لحاظ سے بھی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں اپنی شہزادی کے ساتھ کیسے تھیں،
سبحان اللہ،
یہ بھی کچھ انشاءاللہ عرض کی جائیں گے۔
آج آپ باپ کو بھی سکھائیں گے اور بیٹی کو بھی سکھائیں گے؟
بالکل، سیکھنا چاہیے۔ ہم سیکھیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے، اور آپ سکھانے کے لیے ہی تشریف لائے۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا،
بے شک۔
آپ ہمیں پاک کرنے کے لیے تشریف لائے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے، ہمیں حق سے ملانے کے لیے تشریف لائے، ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے کہ کس کام میں ہمارا بھلا ہے، کس میں ہمارا نقصان ہے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، بیٹیوں کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہو، یہ سیکھنا چاہیے، اور بیٹیوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ باپ کے ساتھ उनका अंदाज कैसा हो। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद होती, और ये रिवायत किन से मरवी है, बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ये तिर्मिजी शरीफ की हदीस है। उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक साहिब औलाद सैयह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी खातून जन्नत के पास तशरीफ लाते, वो खातून जन्नत अपने बाबा जान का इस्तकबाल करती, किस तरह, ताजीम के लिए खड़ी हो जाती,
सुभान अल्लाह,
और अपने बाबा जान रहमत आलमयान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों को थामती और बोसा देती,
माशाल्लाह,
और अपनी जगह पर बिठाती।
सुभान अल्लाह,
कैसा प्यारा अंदाज, कैसा
क्या बात है।
देखिए बिला तकल्लुफ आपने भी वही बात कही जो मैंने कहनी थी, कितना प्यारा अंदाज,
कैसा,
बेटी हो तो ऐसी हो, बाप हो तो ऐसा हो,
वो नजारा भी
हो नहीं सकते। खैर, उनकी हमने इत्तिबा करनी है, इनको फॉलो करना है। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। तो बाप पैरवी करे रसूलुल्लाह की, के बाप को अपनी बेटी पर शफकत कैसे करनी होती,
सही,
और बेटी सीखे खातून जन्नत से कि अपने बाप का अदब किस तरह करना है, अपनी बाप की ताजीम किस तरह करनी है, अपने बाप को ऑनर कैसे देनी है। देखें कि वालिद घर में आते हैं, अब बेटी का क्या अमल होना चाहिए,
सही,
इस्तकबाल करे,
इस्तकबाल,
खड़ी हो जाए, सलाम में पहल करे, मरहबा कहे, अबू आपको मैं पानी पेश करूं,
सही,
अबू खाना कब खाएंगे, पहले आप कुछ पानी पी लें, कुछ बैठें, फिर मैं आपको खाना पेश करती हूं।
वैसे भी बाप की ताजीम औलाद पर लाजिम है,
जी, माँ की भी बाप की भी दोनों की,
माँ खिदमत में मुकदम है, बाप ताजीम में मुकदम है, माँ की बनिस्बत,
जी, क्योंकि वो माँ का भी आका है, इसलिए इसकी ताजीम ज्यादा है,
माशाल्लाह।
तो प्यारे आका अली सलातो सलाम की अपनी बेटी के साथ शफकतें, तो सुनने वाले देखने वाले अपनी बेटियों के साथ शफकत करें, मोहब्बत करें, और बेटियों को कमतर ना जाने, हकीर ना जाने,
सही,
और बेटियां जो हैं अपने बाप की ताजीम करें, और क्या अंदाज हो, जैसे अर्ज किया कि उनके आने पर ताजीम करें, खड़ी हो जाएं, बैठी ना रहें, यानी उसका नोटिस लिया जाए,
सही,
तो वालिद आया भाई, उसकी ताजीम है।
फिर ताजीम के क्या क्या अंदाज हो सकते हैं, किस किस तरह ताजीम की जाए,
जज़ाकअल्लाह, अच्छा सवाल है आपका। आवाज बुलंद ना की जाए, नजरें ना मिलाई जाए, उनका हर वो कहना जो शरीयत के मुताबिक है उसको फॉलो किया जाए, उनकी खिदमत की जाए, बाप के कपड़े धोए बेटी, उसको प्रेस करके दे, बाप की पसंद,
बाप के आगे से ना गुजरे,
हाँ, इस अंदाज से कि उसको फील हो और बुरा महसूस हो।
अगर कोई मजबूरी है या कोई हालात ही ऐसे हैं कि पीछे से गुजरना या हटकर गुजरने की कोई जगह नहीं, तो वो एक अलग बात है।
जी जी, आवाज बुलंद ना करें, उनका हर वो कहा कि जो शरीयत के मुताबिक है वो पूरा करे। अच्छा, बाप से मुतालबे कर करके उसको ईजा ना दे,
सही,
हर एक को फराख दस्ती हासिल नहीं होती। बाप को औलाद पर, बिलखसूस बच्चियों पर खर्च करना चाहिए, लेकिन बच्चियां मुतालबे करती रहें कि मैं अबू फलां जगह गई थी, मेरी सहेली ने इतनी चूड़ियां पहनी हुई थी, अब क्या कह रही कि मुझे भी सोने के जेवरात बना दे।
नहीं, अगर बाप हैसियत वाला है, अब वो खर्च नहीं करता, अब बच्ची का दिल है कि मेरे जरूरत पूरी
नहीं,
होता,
अगर वसअत है तो जरूर खर्च करे, लेकिन अगर बेटी को एहसास है कि मेरे बाप की पोजीशन नहीं है, तो फिर उसको मुतालबा करके इज्जा देने वाली बात नहीं है कि अबू मैं फलां जगह गई थी, वहां कारपेट बिछा हुआ था, हमारे घर में तो नहीं है, तो यूं उसको इज्जा ना दे। बहरहाल,
यानी बात वो अव्वली है कि जब वो खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पेश नजर रखेगी बेटी, तो उनका तज़किरा पड़ेगी, तो हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कनीज का मुतालबा किया था, तो आपने उसका हाल इरशाद फरमा दिया। तो अब वो खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वहां जिद नहीं की, बल्कि अपने वालिद और नबियों के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदायत पर अमल करते हुए वो तस्बीह फातिमा का तोहफा लेकर तशरीफ ले गए।
जी, और ये भी देखें कि प्यारे आका अली सलातो सलाम से शहजादी ने को मुतालबा किया ना, इसका मतलब बेटी मुतालबा तो कर सकती,
मुतालबा तो कर सकती,
और अगर बाप की ये पोजीशन है कि वो पूरा कर सकता है तो पूरा भी करे। मेरे आका अली सलातो असलाम तो मुतालबे पूरे कर सकते हैं अल्लाह की अता से, क्योंकि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई
और वो दिया जो उनके लिए बेहतर था।
बिलाशुबा
ज़ाहिर है सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को दिया और वो एक रहनुमा है और उम्मत के लिए, कायनात के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने वो दिया जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों का फायदा था।
जी हाँ, बेशक बेशक।
मजीद हजूर सल्लम का शफकत करना और खातून जन्नत का मोहब्बत फरमाना।
खातून जन्नत प्यारे अकाली सलातम से बहुत मोहब्बत फरमाती और प्यारे अकाली सलातम की तकलीफ इन्हें बेचैन करती थी।
अल्लाह,
एक बार किसी नाबकार ने, किसी बदबخت ने नबी पाक अली सलातम के सरे मुबारक पर मिट्टी फेंक दी।
अस्तग़फिरुल्लाह।
तो आप इसी हालत में घर पर तशरीफ लाए तो खातून जन्नत फातिमातु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी लेकर सर मुबारक को धोया और कैफियत क्या थी कि सर अकदस को धो भी रही थी और आंखों से अश्क भी जारी थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाने पिदर, ए बाप की जान, अल्लाह ताला तेरे बाप को बचा लेगा। और ये भी रिवायत है कि एक बार बाज बदबख्तों ने मेरे आका अली सलातु वस्सलाम काबे के करीब नमाज पढ़ रहे थे तो कुफारे कुरेश ये जमा थे, उनमें से किसी ने ऊंटनी का बच्चा दान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे तो कंधों पर लाकर रख दिया। अल्लाह की पना, ऊंटनी का वो बच्चा दान जो था। मेरे आका अली सलातु वस्सलाम इसी हालत में अपने रब से लो लगाए रहे, सजदे में रहे और कुफार कह के लगा रहे थे अस्तग़फिरुल्लाह। खातून जन्नत की उम्र 8 साल थी रदी अल्लाह ताला अन्हा। आप आई, पुश्ते अतहर से उस गंदगी को उठाकर फेंका। मेरे आका अली सलातु वस्सलाम ने सरे पाक को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह इन कुरेशियों को पकड़। और फिर नाम लिए उन बदबख्तों के, या अल्लाह तू अबू जहल को पकड़, उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उत्बा, उमैया बिन खलफ और उकबा बिन अबी मुईद को पकड़। और इस हदीस के रावी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला, फरमाते हैं कि इन सब को मैंने जंगे बदर में कत्ल होते देखा और बदर के कुएं में इनको औंधे मुंह के बल फेंक दिया गया। न उठ सकेगा क्यामत तल, खुदा की कसम,
खुदा की कसम,
जिसको तुमने नजर से गिरा के छोड़ दिया। खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की अपने बाबा जान से मोहब्बत के उस कैफियत में भी आप आई और वो ऊंटनी का बच्चा दान जो गंदगी थी वो उठाकर आपने हटाई। और आपकी महबूबियत बारगह रिसालत में कैसी है कि एक बार मेरे आका अली सलातु वस्सलाम ने मौला मुश्किल कुशा को, खातून जन्नत को, दोनों को बिठाया और दिलजोई फरमाई। तो अब मौला मुश्किल कुशा सैयदुल औलिया खैबर कुशा, मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फातिमा मुझसे ज्यादा प्यारी हैं आपको या मैं प्यारा हूं? और कैसा सवाल है। तो मेरे आका प्यारे प्यारे मुस्तफा हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे तुमसे ज्यादा प्यारी है और तुम उससे ज्यादा प्यारे।
क्या बात, माशाल्लाह।
ये अपनी बेटी की मोहब्बत का इजहार भी फरमा दिया। और मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजल करीम आपके वो चचाजाद हैं और आपके बेटे भी हैं, इस लिहाज से कि बेटी का निकाह हुआ और आपके रिश्तेदार भी हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, चचा के बेटे, तो उनकी भी दिलजोई फरमाई। तो
मकसद ये कि भाई भी फरमाया हजरत मौला मुश्किल कुशा को।
जी, अब वो एक मोमिनों के रिश्ते के ताल्लुक से अपना नायब भी बनाया, वो बहुत इनके फजाइल हैं। तो मेरे आका अली सलातु वस्सलाम की अपनी शहजादी के साथ मोहब्बत, चाहत, इनायत, और इसमें वही बात कहूंगा कि वो खुशनसीब वालिदैन जिनको अल्लाह ताला ने बेटियां अता फरमाई है, रहमतें अता फरमाई, बेटी रहमत होती है, तो वो सीखें कि अगर बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, तो बेटों को तरजीह ना दें, दोनों को। अगर तरजीह देनी है तो बच्चियों को तरजीह दें, नहीं अगर कोई चीज तकसीम करनी है कोई सौगात लेकर आए बाजार से, कोई चीज लेकर आए, तो पहले बेटियों को दें फिर बेटों को दें, वरना क्या होगा, बेटियों के दिल में आएगा कि हम चूंकि बेटियां हैं ना तो हमें बाद में मिलना है, तो ये कैफियत पैदा ना हो।
फिर एक बहुत ही नाजुक रिश्ता यानी दामाद और बेटी का, अब यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई कि अब बेटी और दामाद कभी आए तो उनको डील कैसे करें, यानी उनको इस अंदाज में डील करें कि दोनों की दिलशिकनी ना हो। बाज़ुकात इसमें इतदाल का रास्ता छोड़ दिया जाता है, इसमें बाज़ुकात फरात तफरीत का शिकार हो जाते हैं कि बेटी की बिला वजह तरफदारी, उसमें दामाद के दिल में बात आ जाती है, तो बाज़ का ये अंदाज होता है कि बिला वजह ही बेटी को दबा देना, उसके शौहर को चढ़ा देना, तो अब दोनों तरफ को कैसे इतदाल से आपने इसको डील किया, तो ये रहनुमाई है।
जी बिलाशुबा बिलाशुबा।
तो मजीद क्या फरमाते हैं सफर से ताल्लुक, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे आका अली सलातुस्सलाम जब सफर का इरादा फरमाते तो सबसे आखिर में अपनी शहजादी को मुलाकात से नवाजते,
माशाल्लाह,
और जब सफर से वापसी होती तो सबसे पहले अपनी शहजादी से मुलाकात फरमाते,
माशाल्लाह,
और ये अंदाज हमने अमीर अल सुन्नत का भी देखा है, आप ऐसा करते हैं, और ये बहुत अच्छा और दिलजोई वाला अंदाज है, अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अंदाज आपने बयान किया कि सफर से जब तशरीफ लाते तो अपनी बेटी के घर को नवाजते और आपकी दिलजोई फरमाते, तो यहाँ पर सफर की बात हुई है तो इस्लामी बहनों का सिलसिला है नेक खवातीन, तो इसमें इस्लामी बहनों को सफर के कुछ आदाब कुछ या कुछ एहतियातियां बयान करें।
देखें कि औरत सरतापा औरत है,
सही,
जब घर से निकलती शैतान झांकता है, इस तरह की रिवायात है, तो औरत को बिला जरूरत घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। वह करना फी बुयूती कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, ये रब तबारक व तआला का हुक्म है, जो हमारा पाक परवरदगार है जिसने हमें पैदा किया है, जो जजा भी देता है सजा भी देता है, जन्नत और दोजक का खालिक है और रहमत भी फरमाता है अजाब भी देता है, ये उसका हुक्म है। और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दगी ना करो, जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी, वो बेपर्दगी ना करो, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, ये किसी आपकी और मेरी बात तो नहीं ना, भी किसी फर्द की बात नहीं है,
यहाँ तो सर तस्लीम खम है, रब के फरमान पर आंखें जुबान कान सब बंद
जी, अगर नहीं है तो फिर दुनिया आखिरत में बर्बादी 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 है। तो अव्वल तो औरत को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, और अगर निकले तो जो उस पर शरी अहकामात हैं उसको पेश नजर रखते हुए निकले। अब तो बदकिस्मती के साथ क्या कहें भाई, बैरून मुल्क भी सफर कर रही हैं, अकेली चले जाती हैं, जहाजों पर उड़ रही हैं, तो कोच पर तो जा रही हैं, तो
बास का कहना यह है कि जहाज पर सफर करते हुए तो वो दिक्कत वो मुशक्कत नहीं है, सिक्योरिटी भी होती है, और वो जो पहले घोड़ों पर ऊँटों पर पैदल सफर होते थे तो रस्ते दुश्वार गुजार होते थे, सन्नाटा था, अब तो एयरपोर्ट पर गए आगे एयरपोर्ट से रिसीव कर लिया, इसमें क्या है?
क्या मुफ्तियाने किराम ने इजाजत दी इसकी कि अब अहकाम बदल गए?
आप बताएंगे हमें,
वही हुक्म है ना भाई, जहाज, अच्छा जहाज जा वही लैंड करेगा जरूरी?
अच्छा
कितने वाकयात हुए कि कराची से लाहौर आया तो शिद्दत बारिश की शिद्दत इस्लामाबाद चला गया, इस्लामाबाद आए तो वहां शिद्दत की बारिश थी किसी और एयरपोर्ट पे उतरा, कराची जहाज लैंड नहीं किया, कई चक्कर लगाते रखे, कंट्रोल रूम ने उसको इजाजत नहीं दी, फिर जहाज ने नवाबशाह जाके लैंड किया। अब वो औरत जो बगैर किसी काबले इत्मीनान महरम के सफर कर रही है, जरा तसव्वुर करें,
आजमाइश में आ जाएगी,
कैसी आजमाइश होगी भाई, क्या वो कराची वाला जहाज जो नवाबशाह में उतरा अब एयरपोर्ट पर क्या करेगी? इसके मामलात हैं, जरूरतें हैं, संजा वजू भी होता है, दिगर खाने पीने के मामलात है, किससे कहेगी?
या जहाज के अंदर कोई फनी खराबी होगी, प्रॉब्लम है, अब जहाज ही कैंसिल हो गया तो बस औकात वो कहते हैं कि आप भाई रोड चले जाएं, ऐसा भी बस औकात होता है?
बिल्कुल होता है, तजर्बे मुझे तजर्बे हुए, आपको भी होंगे,
बिल्कुल ऐसा ही कई वाकयात ऐसे सुने।
अच्छा फिर अगर किसी औरत के साथ उसका बच्चा भी है, छोटा बच्चा शीरखार है, और उसके मामला देखने उसको फीड करवाना है बिलफर्ज, या और दीगर मामलात क्या करेगी?
बात वही है कि शरीयत की बिल्कुल सर तस्लिम खम करके मान ले,
बिल्कुल,
और अपनी अकल के घोड़े ना,
इसी में आफियत है। एक औरत का मुझे पता चला कि इसी तरह वो होती हैं बेचारियां, और बगैर महरम के वो सफर, बच्चा उनका एब नॉर्मल सा है, वो साथ था, वो देखने में तो लगता है कि ये एक महरम साथ है, लेकिन वो बेचारा एब नॉर्मल है, अब सफर के अंदर बाज चक्करबाज होते हैं, तो इसका बैग उठा के वहां रख दो, भी उसका यूं रख दो, ये नहीं वो पूरा पूरा सामान ही ले जाते। तो बाद में फिर उसने तौबा की कि नहीं मैं तो अब बगैर उसके महरम के सफर नहीं करूंगी, लेकिन फिर तकलीफ टल जाती है ना, फिर दोबारा वो आया था कि नहीं कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, यहां से हम बैठेंगे 4 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, क्या मसला है, वो मसला पूछ कर नहीं आता। अल्लाह आफियत दे,
अल्लाह तबारक व ताला हमें शरीयत इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सर तस्लीम खाम करते हुए आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अल्लाह की अहकामात की बजावरी करने की तौफीक अता फरमाए।
की बड़ी प्यारी बात मुझे याद आई,
जैसा
कि हम अकल के बंदे नहीं अल्लाह के बंदे,
सुभान अल्लाह क्या बात,
अल्लाह के बंदे तो बंदे बन के रहे भाई, हम
बंदगी रब की करें
बेशक।
दूसरा सेगमेंट है, सवालात कीजिए।
एक सवाल करती हूँ कि जहन्नुम में औरतें मर्दों से ज्यादा होंगी।
अब पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगा, माशाल्लाह ये मदनी मुन्नी ने, बच्ची ने बहुत प्यारा सवाल किया कि कपड़े ऐसे बेटा पहने के पूरे बाजू जो कवर हो जाए, गो क्या आप अभी छोटी हैं, लेकिन अभी से आदत डालनी चाहिए। और पेरेंट्स को भी अर्ज करूंगा कि अपनी बच्चियों की अभी से तरबियत करें, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची है, तो वो तो बढ़ती जा रही है, आप बच्ची बच्ची कर रहे हो उसका तो उम्र बढ़ती जा रही है,
तो तरबियत तो बचपन में ही बन रही है ना
जी, तरबियत पहले करेंगे या बालिगा होने के बाद उसकी तरबियत शुरू करेंगे, पहले करनी होगी ना। और जहन्नम नहीं बेटा, लफ्ज है जहन्नम, नून पर जबर है। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं कि हदीस पाक में ये मजमून मौजूद है कि जहन्नम में ज्यादा औरतें होंगी, मगर इस हदीस की जब मैं आपको शरह पेश करूंगा फिर तय होगा कि इसका क्या मकसद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में ज्यादा तादाद औरतों की देखी। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क्या वजह है? फरमाया उनकी नाशुक्री करने की वजह से, औरतों को डरना चाहिए नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या औरतें खुदा की नाशुक्री करती हैं? देखिए सिखाने वाले हैं सीखने वाले हैं, कैसा माहौल है, सुभान अल्लाह। फरमाया औरतें अपने शोहरों की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। इन औरतों की ये आदत है, तुम जिंदगी भर इनके साथ एहसान करते रहो, लेकिन अगर कभी भी कुछ कमी देखेंगी ये कह देंगी मैंने कभी भी तुम्हारी तरफ से कोई भलाई देखी नहीं। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक का खुलासा मैंने पेश किया। जहन्नम में मेरे नबी ने ज्यादा तादाद में औरतों को देखा। अब इसमें मुफ्ती अहमद यारखान नईमी ने वजाहत की, नहीं जहन्नम में औरतें ज्यादा होंगी, इसकी वजाहत कि पहले दोजख में औरतें ज्यादा होंगी, जन्नत में मर्द ज्यादा होंगे, मगर बाद में जन्नत में भी औरतें ज्यादा हो जाएंगी। किस तरह? अस्तगफिरुल्लाह, गुनाहों की सजा भुगत कर, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए जहन्नम से हम सबको, सजा भुगत कर। मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, रोजा नहीं रखती थी, बहाने और हज नहीं किया जबकि फर्ज था, बेपर्दगी, शोहर की नाशुक्री, तो तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, आज तक मैंने कोई खुशी देखी नहीं है, बस मैं तो परेशान ही हूं। शुक्र अदा कर अल्लाह की बंदी, कैसे कैसे लोग दुनिया में परेशान है, उनकी तरफ देखे तो शुक्रगुजारी का जहन बनेगा। बहरहाल मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि औरतें सजा भुगत कर या मुआफी से वो जब जन्नत में पहुंच जाएंगी तो अब जन्नत में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद
सल्लल्लाहु तआला। दूसरा सवाल चलाइए। औरत नावल पढ़े या ना पढ़े क्या करे?
उस नावल के अंदर कोई अस्तगफिरुल्लाह खिलाफ शरा मवाद है तो क्यों पढ़े? औरत क्या मर्द भी ना पढ़े? और औरतें बच्चियां, इसको तो आला हजरत ने नाजुक शीशियां लिखा है, शीशा जरा सा उसको चोट लगे तो वो चकनाचूर हो जाती।
नावलों में तो किस्से कहानियां होती हैं,
झूठी कहानियां और अस्तगफिरुल्लाह वो इश्क और माशूकी और पता नहीं क्या क्या, शर्म आती कहते हुए भी। अब इस तरह के अगर नावेल डाइजेस्ट मैगजीन और न्यूज़पेपर, उसकी खबरें, उसके अंदर फासिका औरतों का जिक्र है, फासिक मर्दों का जिक्र है, खिलाफ शरा मजामीन है, उसको क्यों पढ़े?
तो शरीयत के मवाद वाले मैगजीन बता दें क्या पढ़े।
मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ, और देखें इसमें फतावा रज़वी शरीफ में जो आला हजरत ने फरमाया वो भी अर्ज करूंगा। आला हजरत फरमाते हैं, सही हदीस से साबित है कि लड़कियों को सूरह यूसुफ का तर्जमा तफसीर ना पढ़ाएं, कि इसमें मकरे जना औरतों के धोखा देने का जिक्र फरमाया।
अल्लाह अकबर।
ठीक है,
सूरह यूसुफ कुरान पाक की सूरत है, उससे भी मना,
तर्जमा तफसीर, क्योंकि उसमें औरतों के मकर का जिक्र है तो इसके मनफी असरात, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं औरतों पर। तो अब अंदाजा लगाएं, बेढंगी तस्वीरें हैं, फिल्मी इश्तिहारात हैं, फिर वहां पर तबाहकुन गुफ्तगु है, तो ये मर्द और औरत दोनों के लिए तबाहकुन है। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए कुरान। हमें क्या पढ़ना चाहिए? कुरान का तर्जमा और तफसीर। तफसीर सिरातुल जिनान तो मोबाइल में भी, अब तो इसके और फीचर भी आ गए माशाल्लाह। अब पढ़ने के अलावा आप सुन भी सकते हैं, कुरान भी, तर्जमा भी, तफसीर भी,
माशाल्लाह।
तो और भी आसान हो गया, जैसे सफर के अंदर तो सुनते रहें। अच्छा, इस तरह जो हिकायात, वाकयात, स्टोरीज, तो इस्लामिक स्टोरीज पढ़ें, जैसे उयूनुल हिकायात, माशाल्लाह,
शिकायतें,
शाने खातून जन्नत, माशाल्लाह कितनी प्यारी अजीम किताब है, ये पढ़ें।
सीरत मुस्तफ़ा पढ़ें,
सीरत मुस्तफ़ा पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें
माशाल्लाह।
इस तरह
माहनामा फिजाने मदीना पढ़ें,
जी
माहनामा फिजाने मदीना,
माहनामा फिजाने मदीना वो भी है। अजाबुल कुरान में कितने कुरानी वाकयात हैं, फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की 425 हिकायात, 152 रहमत भरी हिकायात, करामात सहाबा, फिर बच्चों के लिए नूर का खिलौना, फिरौन का ख्वाब, नूर वाला चेहरा, बेटा हो तो ऐसा, कुरानी वाकयात जो है ना कितने सारे हैं, ये सुनाए ना। और मैंने तजुर्बा किया अपने बच्चों को, अब तो कुछ बड़े हो गए तो वो छोटे छोटे थे, तो इनको जब मैं अजाबुल कुरान से कुरानी वाकया सुनाता तो मैं देखता तो बड़े दिलचस्पी के साथ सुनते हैं
माशाल्लाह।
तो ये तरकीब की जाए, तो नावेल, डाइजेस्ट, और इसके अलावा को नेट पर खबरें, तो उस पर बेहयाई के मनाजिर ही होंगे और क्या होगा।
मदनी चैनल देखे,
सोशल मीडिया, तो उस पर खबरें देखनी है, वो क्या खबरें करके करनी है भी,
सही,
अपनी खबर लेना, आखिरत की फिक्र करें।
नाजरीन, हमारे सिलसिले का इख्तिताम है। आज के सिलसिले में निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी पर कैसी शफकत थी, और खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अपने वालिद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत थी, और आपकी अदाओं और आपकी खिदमत करना और आपसे मोहब्बत करना, इन वाकयात को बयान किया। यहाँ पर बेटी के लिए भी दर्स है कि अपने वालिद की खिदमत कैसे करे, और बाप के लिए भी दर्स है कि वो अपनी बेटी पर शफकत कैसे करे। अब ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे कब? जब सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ेंगे, सीरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुताला करेंगे, या ऐसे वाकयात को मदनी चैनल पर देखेंगे, या उलमा से सुनेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि हम दीन की तालीम से दूर हैं। अगर दीन की तालीम से हमें शौक पैदा हो जाए और इसका शौक अपने दिल में हम पैदा करें और इसको पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, हदीस मुबारक पढ़ें, और सीरत मुस्तफ़ा किताब से दोस्ती कर लें। और भी किताबें हैं, सीरत रसूल अरबी है, और भी उलमा ने किताबें लिखी हैं, मदारिज नबूवा है, सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें, समझें। आज का बाप बहुत परेशान है कि औलाद की तरबियत कैसे करनी है, घर को कैसे मैनेज करना है, तो कुरान पाक ने हमारे लिए रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को करार दिया है। तो बाप के लिए भी तरबियत है, बाप के लिए उसमें बहुत मदनी फूल हैं, तो वहां से सीखे कि मैंने एक बाहसियत बाप अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी है। अगर हम इसको सहाबा इकराम की जिंदगी को देखें, तो सहाबा इकराम अली रिदवान हदीस की तलाश में, सरकार की सुन्नत की तलाश में मुल्कों का सफर करते थे, तो वो तो जर्नल हदीस और सुन्नतों को तलाश करने के लिए इतने सफर करते थे। कम से कम मैं अपने मुतअल्लिका इल्म की तलाश में तो निकलूं, मैं अपने मुतअल्लिका इल्म की प्यास में तो अपने अंदर प्यास पैदा करूं कि मैं एक वालिद हूं तो इसके क्या तकाजे हैं, मैं एक ताजिर हूं तो इसके क्या तकाजे हैं, मैं एक पड़ोसी हूं तो इसके क्या तकाजे हैं, यानी मैं जो मुझसे मुतालिक चीजें हैं मैं वो सीरत रसूल से तलाश करूं, डायरी बना लूं कि ये सरकार अलैहिस्सलाम का अंदाज था اور اس کو اپنی زندگی میں اپناؤں تو انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کی سنتوں پر جینا مرنا نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.